ಸ್ತವರಾಜರ್ಷಿ ಸತ್ತಮ ವಾಸುದೇವ ಕಥಾಯಾಂತೆ ಯಜ್ಜಾತಾ ನೈಷ್ಠಿಕೀರತಿಹಿ ಶ್ರೀಶುಕೋವಾಚ ಸಮ್ಯಗ್ ವ್ಯವಸಿತಾ ಬುದ್ಧಿಹಿ ತವ ರಾಜರ್ಷಿ ಸತ್ತಮ ವಾಸುದೇವ ಕಥಾಯಾಂತೆ ಯಜ್ಜಾತಾ ನೈಷ್ಠಿಕೀರತಿಹಿ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಶ್ರೀ ಸುಖೋವಾಚ. ಶ್ರೀ ಸುಖದೇವ ಗೋಸ್ವಾಮಿನೇ ಕಹ ಸಮ್ಯಕ್ ಪುರಿ ತರಹ ವ್ಯವಸಿತ ಸ್ಥಿರ ಬುದ್ಧಿ ಬುದ್ಧಿ ತವ ಆಪ್ಕಿ ರಾಜರ್ಷಿ ಸತ್ತಮ ಹೇ ರಾಜರ್ಷಿಯೋ ಮೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಾಸುದೇವ ಕಥಾಯಾಂ ವಾಸುದೇವ ಕೃಷ್ಣ ವಿಷಯಕ ಕಥಾಯೆ ತೇ ಆಪ್ಕಾ ಯತ್ ಕ್ಯೂಂಕಿ ಜಾತಾ ಉತ್ಪನ್ನ ನೈಷ್ಠಿಕಿ ಅನವರತ್ ರತಿಹಿ ಆಕರ್ಷಣ ಯಾ ಭಾವಮಯ ಭಕ್ತಿ. ಅನುವಾದ ಎವಂ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಶೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಜಿ ದ್ವಾರ ಅನುವಾದ. ಶೀಲ ಸುಖದೇವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ನೇ ಕಹ ಹೇ ರಾಜರ್ಷಿಯೋ ಮೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಚೂಂಕಿ ಆಪ್ ವಾಸುದೇವ ಕಿ ಕಥಾಂಕೆ ಪ್ರತಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಆಕೃಷ್ಟ ಹೇ ಅತಃ ನಿಶ್ಚಿತ ರೂಪ ಸೆ ಆಪ್ಕಿ ಬುದ್ಧಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಮೇ ಸ್ಥಿರ ಹೇ. ಜೊ ಮಾನವತಾ ಕಾ ಏಕಮಾತ್ರ ಅಸಲಿ ಲಕ್ಷ್ಯ ಹೇ ಚೂಂಕಿ ಯಹ ಆಕರ್ಷಣ ಅನವರತ ರಹತಾ ಹೇ ಅತೇವ ನಿಶ್ಚಿತ ರೂಪ ಸೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಹೇ. ತಾತ್ಪರ್ಯ ರಾಜರ್ಷಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶಾಸಕ ಕೆ ಲಿಯೇ ಕೃಷ್ಣ ಕಥಾ ಅನಿವಾರ್ಯ ಹೇ. ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಮೇ ಭೀ ಯಹಿ ಕಹಾ ಗಯಾ ಹೇ ಇಮಂ ರಾಜರ್ಷಯೋ ವಿದುಃ. ಕಿಂತು ದುರ್ಭಾಗ್ಯವಶ ಇಸ್ ಯುಗ್ ಮೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಧೀರೆ ಧೀರೆ ಐಸೆ ನಿಕೃಷ್ಟ ಲೋಕೆ ಹಾಥ ಮೇ ಜಾ ರಹಿ ಹೇ ಜಿನ್ಹೇ ಕೋಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ನಹಿ ಹೇ. ಇಸ್ಲಿಯೇ ಸಮಾಜ ಕಾ ತೇಜಿ ಸೆ ಪತನ್ ಹೋ ರಹಾ ಹೇ. ಸರ್ಕಾರ ಕೆ ಪ್ರಶಾಸಕೋ ಕೋ ಕೃಷ್ಣ ಕಥಾ ಸಮಜನಿ ಚಾಹಿಯೇ, ಅನ್ಯಥಾ ಪ್ರಜಾ ಕೈಸೆ ಸುಖಿ ಹೋ ಸಕ್ತಿ ಹೇ ಔರ್ ಕಿಸ್ ತರಹ ಉಸೆ ಭೌತಿಕವಾದಿ ಜೀವನ ಕೆ ಕಷ್ಟ ಸೆ ಛುಟಕಾರಾ ಮಿಲ್ ಸಕ್ತಾ ಹೇ. ಜಿಸ್ಕಾ ಮನ್ ಕೃಷ್ಣ ಭಾವನಾಮೃತ ಮೇ ಸ್ಥಿರ ಹೋ ಚುಕಾ ಹೇ, ಸಮಜಿಯೇ ಕಿ ಜೀವನ ಕಾ ಮೂಲ್ಯೋ ಕೆ ವಿಷಯ ಮೇ ಉಸೆ ಪ್ರಖರ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹೇ. ಮಹಾರಾಜ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ರಾಜರ್ಷಿ ಸತ್ತಮ ಅರ್ಥಾತ್ ಸಮಸ್ತ ರಾಜರ್ಷಿಯೋ ಮೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಥೆ ಔರ್ ಸುಖದೇವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮುನಿ ಸತ್ತಮ ಥೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಸಾರೇ ಮುನಿಯೋ ಮೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಥೆ. ದೋನೋ ಹಿ ಕೃಷ್ಣ ಕಥಾ ಮೇ ಏಕ್ ಸಿ ರುಚಿ ಕೆ ಕಾರಣ उच्च पद को प्राप्त थे। अगले श्लोक में वक्ता तथा श्रोता के उच्च पद की बहुत सुंदर व्याख्या की गई है। कृष्ण कथा इतनी उत्साहदायक है कि महाराज परीक्षित समस्त भौतिक बातों को, यहाँ तक कि खाने पीने संबंधी निजी सुविधाओं को भी भूल गए। यह इसका प्रमाण है कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन को वक्ता तथा श्रोता दोनों को एक समान दिव्य स्तर पर लाने तथा भगवत धाम ले जाने के लिए सारे विश्व में किस तरह फैल जाना चाहिए। ओम अज्ञानं तिमिरांध्यस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदात्मिकं। वंदे अहम श्री गुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री श्री राधा कृष्णपादान सहगण ललिता श्री विशाखानितं स नमों विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के दसम स्कंद जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है, उसी के शुरुआत में अभी तक आप सुन चुके हैं। अभी तक महाराज परीक्षित आपने आग्रह प्रकाश कर रहे थे, सुखदेव गोस्वामी को अनुरोध कर रहे थे सुनने के लिए, और उनका एतादृशी बलवती इच्छा, ऐसा बलवती आग्रह को सुन करके देख करके अभी सुखदेव गोस्वामी के कहना है। आज श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं व्यासन से, वो कह रहे हैं कि हे राजर्षि सत्तम, आपके बुद्धि बिल्कुल परिनिष्ठित ठिकाने में, सम्यक बवेशिता बुद्धि। हे राजर्षि सत्तम, आप बुद्धि बिल्कुल सम्यक व्यवस्थित है। क्यों न वासुदेव कथायाम ते यज्जाता नैष्ठिकी रति। वासुदेव भगवान कृष्ण के कथा सुनने के प्रति आप इतने आग्रह रखते हैं, इतने उत्साह है आपके मन में वासुदेव कथा के प्रति, तो यही लक्षण है भगवान कृष्ण के कथा श्रवण के प्रति कितने आपके उत्साह है, कितने आग्रह है, इसी के अनुपात में आपके प्रज्ञा प्रतिष्ठिता माना जाएगा, आपके बुद्धि ठिकाना है कि नहीं पता चल जाएगा। हाँ, भगवद गीता में द्वितीय अध्याय में भगवान ने अर्जुन को समझाते हैं कि जिनका बुद्धि बिल्कुल निष्ठा को प्राप्त कर चुका है, बिल्कुल स्थिर बुद्धि हो चुका है, तस्य प्रज्ञान प्रतिष्ठिता। कुछ श्लोकों में भगवान ने कुछ लक्षण बताया है, प्रजाहति जदा कामान सर्वान पार्थन मनोगतान, कई सारे जोगी प्रणवी ने कठिन क्रिया बताए कि ये लक्षण दिखे तब माना जाएगा कि बुद्धि उनको बिल्कुल स्थिर हो चुका है। ये तो बड़े कठिन काम बताते, कर्मांगानि व सर्वसह, बड़े कठिन प्रक्रिया, लेकिन ये कुछ नहीं करना पड़ेगा, केवल भगवान कृष्ण की कथा सुनने के प्रति प्रगाढ़ लालसा मन में उत्पन्न हो जाए, वो सारे प्रजाहति ज्यादा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान सारे स्थिति की अपने आप प्राप्त हो जाएगा। सबसे बड़े अथॉरिटी श्री सुखदेव गोस्वामी इसको कहते हैं, ये कहते हैं हे राजा, मैं चमत्कृत हो रहा हूं देख करके आपका बुद्धि इस स्थिति पर आ चुका है, सम्यक वैसा वासुदेव कथा सुनने के लिए इतने नैष्ठिकी रति। तो मतलब वासुदेव कथा सुनने के लिए जिनका रति प्रबल है उनका बुद्धि बिल्कुल स्थित हो चुका है, अति उच्च कोटि के हो चुका है, यही माना जाएगा। ये सर्वोच्च अधिकारी श्री सुखदेव गोस्वामी इस बात को घोषणा करते हैं और कहते हैं हे राजर्षि सत्तम, उसके पहले महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी को मुनि सत्तम करके कहे थे, तो उसके उत्तर देते हुए वो कहते हैं कि मैं तो मुनि सत्तम हूं लेकिन आप मेरे से भी आगे हो, मैं तो मुनि में उत्तम हूं मुनि सत्तम हूं। ये सप्तम शब्द सुपरलेटिव डिग्री है, जैसे गुड बेटर बेस्ट, एक अच्छा होता है फिर कंपैरेटिव फिर सुपरलेटिव, ये जो मुनि सत्तम और राज समय सुपरलेटिव डिग्री में है। एक आचार्य कहते हैं राजा तो उनको माना जाएगा अच्छा खासा राजा जो प्रजा को अपने पुत्र जैसा पोषण करता लालन पालन करता है, उनको अच्छा राजा माना जाएगा। और उन राजा केवल एडमिनिस्ट्रेशन में पक्का नहीं है, उनका उनको अगर धार्मिक क्रिया में भी लगाव है, धर्म कर्म भी कर रहा है, तो वो राजा में ऋषि माना जाएगा। ऋषि माना जो जीवन के लक्ष्य बारे में जानता है, कुछ धर्म कर्म संयम आदि बरत रहा है, तो उसको केवल राजा नहीं क्या कहा जाएगा, राज ऋषि राजर्षि कहा जाएगा। राजा होकर भी इज कंट्रोलिंग हिज सेंसेस एंड रिलीजियस प्रिंसिपल्स को मानता, तो राज ऋषि। तो उन राजाओं से बेटर राज ऋषि, उन राज ऋषि में जो जीवन के लक्ष्य के बारे में जिसको पता है और दूसरे को भी पता करवाता है, वो राजर्षि नहीं राजर्षि उत्तम राजर्षि सत, वो सत राजर्षि है। और उससे भी जो और अधिकतर पहुंचा हुआ है, स्वयं अभ्यास भी कर रहा है साधना भक्ति का, तो वो राजर्षि, एक तो राजा से ऊपर राजर्षि, राजर्षि राजर्षि सत, राजर्षि सत्तर, बिकॉज ही इज प्रैक्टिसिंग डिवोशनल सर्विस। और जो भगवान कृष्ण के प्रति इतने प्रेम भक्ति से जुड़ा गया है, जुड़ गया है जैसे परीक्षित महाराज, तो उनको कहा जाएगा राजर्षि सत्तम, द टॉपमोस्ट। भगवान के साथ, भगवान के बिना, वो ये जो श्लोक आप पढ़ चुके हैं अभी, कितने उनके लालसा प्रकट किया हुआ है भगवान कथा को सुनने के लिए इच्छा, तो इसी के लिए करते राजर्षि सत्तम। और उन्होंने सुखदेव गोस्वामी को मुनि सत्तम करके कहे थे, तो सुखदेव गोस्वामी कहते मैं तो एक मुनि मात्र हूं, लेकिन मुनियों में उत्तम हो सकता हूं मुनि सत्तम, लेकिन आप हम जैसे कई मुनि ऋषि और प्रजा सभी के अथॉरिटी राजा है, और केवल राजा नहीं हम लोग का नेता तो अब है ही है, हम सब आपके अंडर में रहते हैं, और राजाओं में से ऋषि, ऋषि में ऋषि सत्तर, ऋषि सत्तर ऋषि सत्तम राजर्षि सत्तम है, आप तो हमसे भी बहुत ऊपर की बात, बहुत बड़े हैं। क्योंकि कोई जंगल में जाकर कोई ऋषि मुनि बनना, किंतु राजा होते हुए ऋषि मुनि बनना और भी उनके बिल्कुल टॉपमोस्ट पोजिशन में रहना, ये कोई साधारण बात नहीं है। ऐसे कहकर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित जी की प्रशंसा कर रहे हैं। ये प्रशंसा करने का कारण क्या है, एक ही गुण वो देखते हैं, केवल एक ही गुण। अभी तो मिले, अभी सुखदेव गोस्वामी आसन में बैठे ही हैं, परीक्षित महाराज उनके प्रति जो प्रश्न पूछे, अभी बातचीत शुरू नहीं हुआ, केवल प्रश्न को सुन करके सुखदेव गोस्वामी ये अंडरस्टैंड, ये समझ जाते हैं कि हे राजा आप राजा नहीं, आप राज ऋषि सत्तम है। एक तो राज ऋषि सत्तम है, लेकिन मैं देख रहा हूं आपका ये जो प्रकार के लक्षण है, आपका बुद्धि सम्यक व्यवस्थिता, सम्यक रूप से व्यवस्थित है। भगवान कहते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धिर एकेह कुरुनंदनः, जिनका बुद्धि एक हो चुका है व्यवसायित का बुद्धि है, और जो भोग प्रसक्ता नाम वो समाधो न विधीयते, वो व्यवसायित का नहीं होते, बहु शाखा अनेक अनेक, जिनके बुद्धि बिल्कुल एक एक हो चुका है, एक निष्ठा पर प्राप्त कर चुका है, इसी का लक्षण। हाउ टू नो दिस, कैसे जानेंगे कि भगवान के कथा के प्रति प्रबल लालसा कथा सुनने के प्रति, वही है। और वही भक्ति है कि नहीं, इसी का मीटर, जैसे आप हमको कई बुखार हो जाता है कभी तो थर्मामीटर लगा कर चेक करते हैं 104 105 कितने डिग्री बुखार हुआ है, ठीक इसी प्रकार हम अभी इतने साल से ये संस्था में रहकर कुछ कर रहे हैं, कभी कभी किसका मन में डाउट हो रहा है कि हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे या खड़े हैं, क्या है भक्ति, कुछ हो रहा है या नहीं, वर जस्ट पासिंग टाइम, कैसे पता चलेगा, भक्ति के मीटर डालकर देखना पड़ेगा ना कि भाई तो भक्ति के मीटर, तो वो कहते हैं धर्म स्वनिष्ठितः पुंसा विश्यक स्वेन कथा स्वयः न उत्पादय रति जदिम श्रम एव ही केवलम रति। यहां भी ये शब्द रति आया है, रति मतलब प्रबल इच्छा, प्रबल लालसा को रति कहते हैं। तो वहां भी श्री सुत गोस्वामी कहते हैं कि कोई धर्म स्व अनुष्ठित पुंसा, कोई पुरुष आपने स्वधर्म में भली प्रकार से स्थित है, वो पालन भी करता है अपना जो स्वधर्म है प्रिस्क्राइब ड्यूटी से, इसको परफेक्टली इज डूइंग, परफेक्टली आपने स्वधर्म पालन कर रहा है, धर्म स्व अनुष्ठित पुंसा, लेकिन आपने स्वधर्म को भली प्रकार से पालन करते हुए अगर उनका कृष्ण के कथा के प्रति आग्रह प्रकट नहीं होता, न उत्पादे रति जदिम, उसका मन में अगर रति मतलब प्रबल इच्छा भगवान के विश्वक्षण, भगवान कृष्ण के, भगवान कृष्ण के एक नाम विश्वक्षण है, ये उनका नक्षत्र नाम है, जब भगवान का प्रकट हुआ था कंस के कारागार में तब उनका जो कुष्ठी गणना में जो नाम पड़ा था वो विश्वक्षण नाम है, नक्षत्र के नाम है विश्वक्षण, तो ये विश्वक्षण भगवान कृष्ण के कथा की लीला कथा को सुनने के प्रति जिनका मन में रति मतलब प्रगाढ़ इच्छा पैदा नहीं होता, वो कितने बढ़िया अपने स्वधर्म पालन भले करें, वो सारे कार्य उसका कैसे माना जाएगा, श्रम एव ही केवलम, सब पर्यायवाची शब्द है, एव शब्द का जो अर्थ है ही शब्द का वही अर्थ है, केवल शब्द का भी वही अर्थ है, ओनली यूजलेस लेबर नथिंग एल्स ओनली, यही कहते ये सारे स्वधर्म का पालन। चैतन्य भागवत और एक स्टेप आगे कहते हैं वृंदावन दास ठाकुर, चारी वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नहीं भजे, स्वधर्म पालन करी सही रौरवे पड़ी मजे। बोलते हैं कि चार वर्णाश्रम धर्म के पालन करने वाले लोग, आपने अपने वर्ण अनुशासन के धर्म को बड़ी बढ़िया से पालन करते हैं, लेकिन केवल वर्ण और आश्रम उचित धर्म को ठीक ठीक से पालन करते हैं, लेकिन कृष्ण भजन नहीं किए, कृष्ण श्रवण कथा श्रवण नहीं किए, तो उनके लिए रिजर्व कंपार्टमेंट है, कौन सा, रौरव नरक उनके लिए रिजर्व है, बाकी कहीं नहीं जाने वाले, ये नामदास ठाकुर का स्टेटमेंट, रौरव पड़ी मत, हाँ बहुत बढ़िया से वर्णाश्रम ठीक ठीक पालन करते वर्णाश्रम धर्म, लेकिन कृष्ण भजन के बिना यूजलेस, पहले कुछ भी करे। तो यही कृष्ण कथा सुनने के प्रति सुनने की इच्छा ही भक्ति का हमारा अंदर है नहीं है कितने परिमाण, यही से पता लगा सकते हैं, हम बहुत सेवा करते हैं बढ़िया करते हैं, क्लास में आने के लिए इच्छा नहीं करता, नहीं ना केवल, बाकी सब इज परफेक्ट, सो नाइस डिवोटी, ओनली इज नॉट अटेंडिंग क्लास, तो भागवत कहता है कि श्रम है वही केवल। तो परीक्षित महाराज के मन में कृष्ण के बारे में सुनने के प्रति इतने प्रगाढ़ लालसा था कि उन्होंने, देखिए ये कोई सोचने के लायक बात है, अब ये कोई छोटे मोटे अथॉरिटी तो थे नहीं, परीक्षित महाराज पूरे सागरा धरा पूरे विश्व के सम्राट थे, उनका कोई अपोजिशन पार्टी था नहीं, कोई कंपटीशन था नहीं उनका, कोई इलेक्शन लड़कर राजा थोड़ी बने थे, ना 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 ना, इतने बड़े अथॉरिटी थे, तो उनको एक साधारण ब्राह्मण बालक उनको इतने बड़े अभिशाप दे दे, वो बालक को अगर सामने राजा होता और बोल छिप करके बोलता, उनके सामने नहीं बोलता है, पिटेंगे कुछ है, राजा लोग, राजा क्षत्रिय होते हैं, शासन में इमीडिएट एक्शन ले सकते हैं, क्षत्रिय लोग कुछ भी कर सकते। तो वो देखा नहीं था राजा को भी, वो लड़का स्नान कर रहा था, कोई वो बोल दिया और पता नहीं उन्हें क्यों बोला कि आफ्टर 1 वीक वो तुरंत ही बोल सकता था कि जब सुना कि मेरे पिताजी के गले में मृत्यु सर्प डाल दिया, उनको सांप काट दो, मैं ऐसे बोल सकता था, नहीं पता नहीं भगवान ने उनके क्या उनके बुद्धि में आए, उन्होंने 1 वीक पीरियड लिया। एक हफ्ता में उनको, फिर ये सेलेस्टियल स्नेक, ये कोई भौतिक ब्रह्मांड के सांप नहीं काटेगा, तक्षक जो है इस धरती के सांप नहीं है, वो स्वर्गीय सांप है, उड़नता सांप, बाढ़ स्नेक, वो आकर काटे एक हफ्ता में करके उन्होंने अभिशाप दे दिया। और वो तो राजा को दिखा नहीं, वो बोला कोई बताएंगे नहीं, तभी मीडिया इतना एक्टिव था नहीं, कोई थोड़ी जाकर राजा को बोला, राजा को पीटेगा कुछ गाली देगा, बोला बोल दिया सांप अपना काम करेगा। लेकिन जब आकर के उनके पिताजी को बताया, तो पिताजी जब सुने बड़े दुखी हुए, बड़े दुखी हुए। उन पिताजी समीक ऋषि ने स्वयं आपने एक शिष्य को भेजे, बोले जाकर के बताओ परीक्षित महाराज को मेरे नादान लड़का ऐसा कर दिया, जाकर उनको बताओ। बोले सर राजा को बताएंगे, वो कुछ एक्शन लेगा पिटेगा। अरे कुछ एक्शन लेगा तो कम से कम उसका अपराध तो बच जाएगा। बोले इतनी बड़ी भक्त राजा है, क्योंकि समीक ऋषि जानते हैं परीक्षित महाराज कोई साधारण पुरुष नहीं है, बहुत उच्च कोटि के साधु भक्त हैं, उनके प्रति जो अपराध कर दिया है नादान, उसका अपराध घटेगा कैसे? अगर वो थोड़ा गुस्सा करेंगे, कुछ पकड़ करें मारपीट, तब थोड़ा उनका कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। बोले इसलिए जाकर बताओ। लेकिन बताते समय भी समीक ऋषि सोच रहे, बोले मुझे पता है कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि भक्त है, कोई साधारण भक्त नहीं, अति उच्च कोटि के भक्त है। अति उच्च कोटि के भक्त का ही लक्षण होता है, वो कभी एक्शन नहीं लेगा, ना कभी एक्शन नहीं लेगा, भले उनको किसी प्रकार से कोई मारे पीटे अपमान करे धोखाबाज करे कुछ भी करे, वो प्रतिशोध नहीं लेंगे, वो नहीं लगा। वो ठीक वही हुआ, परीक्षित महाराज आकर के सोच रहे थे मैंने इसे क्यों किया, मैंने इसे कुकर्म क्यों किया। वो बड़े परेशान थे, मतलब क्या करूं, ऐसा मैंने क्यों किया, क्या करके उनको प्रायश्चित करूं। वो इसी समय में दरवाजा पर मैसेज आया कि महाराज आपसे कोई मिलने आया है, कोई ब्राह्मण, मतलब बुलाओ। वो आके प्रणाम किया, बोला मेरे गुरुजी समीक ऋषि ने इसे भेजे हैं कि उनके लड़का ने आपको, एक हफ्ता के अंदर तक्षक दंशन मृत्यु। परीक्षित महाराज उसे सुन करके, हम लोग तो कोई छोटे मोटे व्यक्ति है, लेकिन को पता चलता ना इमीडिएट जाते दो थप्पड़ मारते, बदमाश है ना, नहीं हमारा कोई पावर पोस्ट नहीं, फिर भी परीक्षित महाराज पूरे पृथ्वी के नंबर 1 अथॉरिटी थे और उनका समर्थ था, ऐसा नहीं कि कोई सामर्थ्य नहीं था, कुछ भी कर सकते थे, और ब्रह्म साहब की काउंटर भी कर सकते थे, हो ब्रह्म साहब उन्होंने कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन उन इतने प्रसन्न हो गए, बोले वाह वाह वाह, कृष्ण को तुरंत धन्यवाद, बोले कृष्ण थैंक यू कृष्ण, आप कितने दयालु है, सचमुच में सोच रहा था मैं क्या करूं क्या करूं, आप पहले से व्यवस्था करके रखें, एक हफ्ता का नोटिस ही मुझे दिए, कितने कृपालु है, कृष्ण को इतने धन्यवाद दिए, और तुरंत अपने पुत्र को सब सौंप दिए, चेकबुक वगैरह सब हैंडओवर कर दिए, इमीडिएट आधा घंटे के अंदर सब ट्रांसफर किए, गमछा पहनकर चले गए घर से निकल कर, जाकर गंगा के शरण में रह गए। और बोले जिस प्यास के कारण मैं इसे कुकृत्य किया, उस तो पानी तो मैंने पिना ही नहीं है, खाना भी नहीं, कुछ भी नहीं खाऊंगा, अब जो मरने का पता चल गया 7 दिन में ड्यू डेट है, वो फिर क्या करूं, मरना तो ऐसे खा पी कर मरूंगा, बिना खाए तो भी मरूंगा, अब पानी नहीं पीने से पहले मरूंगा ये बात नहीं, क्योंकि डिसाइड हो चुका है 7 दिन के बाद मरना है, उसके पहले मर ही नहीं सकता, तो क्यों ये 7 दिन को विशेष कार्य में न लगाया जाए। तो ये अगर परीक्षित महाराज को ये ब्रह्म साप नहीं लगा होता, आज हमारा भागवत क्लास कैसे होता, भागवत ही होता नहीं तो हम क्लास क्या करते। तो उनका महाराज परीक्षित का प्रयाण भी इतने महान लोक कल्याण, जुग जुग तक सकल लोगों के महाकल्याण कर गए, जाते समय में इतने बड़े कल्याण ये धरती पर भागवत दे गए, हाँ आज उन्हीं के कारण भागवत आया, नहीं तो कैसे आता। और इसी भागवत ग्रंथ में ये केवल सुखदेव नहीं कहते हैं, उनके पिताश्री भागवत के रचयिता श्री व्यासदेव जी का कहना है। व्यासदेव जी भागवत ग्रंथ रचना किए, उसके पहला मंगलाचरण जो तीन श्लोक है, दूसरा श्लोक में जिसमें वस्तु निर्णय करते हैं उसमें वो कहते हैं, जिसमें धर्म प्रोज्जित कैतवत्र निमसराणाम सताम, उसी के अंतिम पद पर कहते हैं सद्य हृदय कृति भी सुश्रुषुभि तत्क्षणात्। सुश्रुषुभि शब्द का अर्थ है अभी सुना नहीं, सुनने के इच्छा, श्रवण इच्छा, सुनने के इच्छा किसको न, इसी भागवत में जो कृष्ण कथा है उसको श्रवण करने के लिए कोई प्लान करे, इच्छा करे, इच्छा मात्र सुश्रुषुभि, इच्छा करने मात्र से क्या होगा, तत्क्षणात इमीडिएटली क्या होगा न, सद्य हृदय कृति भी सी हरि, तुरंत उनके हृदय के अंदर प्रवेश करेंगे और लॉकअप हो जाएंगे, बाहर नहीं निकल सकते। अवरुद्ध इति, अवरुद्ध हो जाना, ये शब्द आया अवरुद्ध, अवरुद्ध मतलब रुद्ध और अवरुद्ध, किसी को घर में डाल करके बाहर से चाबी बंद कर दो तो उसे बोले रुद्ध कर दिया उस घर में, उसे बंद कर दिया। लेकिन अवरुद्ध का मतलब वो चाहता निकलने के लिए कोई उपाय नहीं निकल ना सके, किसी प्रकार से बाहर निकल ना सके, अवरुद्ध हो गया। तो भगवान कृष्ण उनके हृदय में जाएंगे और अवरुद्ध हो जाएंगे, बताओ कितनी बड़ी बात, अभी सुना ही नहीं, सुनने के इच्छा से। ये कृष्ण कथा इतने पोटेंट है, इतने प्रभावशाली, कोई योग ध्यान कर्म ज्ञान फॉरगेट इट, कुछ नहीं करना है, आप स्थित प्रज्ञा स्थिति को प्राप्त करना है, अचि उच्चतर बुद्धि को स्थित करने की स्थिति में आ जाना है, समाधि स्तर में, केवल कृष्ण कथा सुनने के लिए प्रबल इच्छा ही इस स्थिति को आप ला सकता है। जिनको बड़े बड़े योगी ऋषि प्रयास करके नहीं कर पाते हैं, किसी भी स्थिति में, किसी भी आश्रम में, कहीं से भी स्थान में रह करके अगर आपका मन में कृष्ण कथा श्रवण के प्रति केवल लालसा आधिक्य हो जाए तो आप इसे योगिक स्थिति का सबसे टॉपमोस्ट स्थिति को आ सकते हैं, और इतने बड़े स्थिति को आ सकते हैं कि साक्षात परम ब्रह्म भगवान आपके हृदय में आकर के जम कर बैठ जाए, बाहर ना जाए, कौन नहीं चाहेगा इस बात को, और ये इसका प्रभाव है। यज्जाता नष्ठिकी रति, वासुदेव कथा में आपके रति नष्ठिकी रति, वही वासुदेव कथा में जिसका प्रबल निष्ठा है, आग्रह है, इसी स्थिति को कहा जाता है उन्हीं का बुद्धि सम्यक व्यवस्थितः, उनके बुद्धि सम्यक रूप से भली प्रकार से शुद्ध हो चुका है और स्थिर हो चुका है, उसका प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो चुका है, यही माना जाएगा, यही लक्षण है। बाकी सारे इतने कठिन कठिन योगिक मार्ग का जो लक्षण बताया गया वो सारे का रिजल्ट यही है, और ये सब योगिक स्तर में करने पर भी अगर कृष्ण कथा में रुचि नहीं है तो वो भी यूजलेस है, वो भी यूजलेस है। और कृष्ण कथा इतने लाभदायक है, इतने प्रभावशाली है, तो क्यों नहीं उनको सुनने की इच्छा करे, उसके लिए कहते हैं कि कौन सुनने के लिए इच्छा नहीं करेगा। वो परीक्षित महाराज कहते हैं केवल दो ही कैटागोरी के लोग नहीं सुनने की इच्छा करेंगे, बिना पशुघात, केवल पशुघाती लोग ही सुनने के लिए इच्छा नहीं करेंगे। पशुघाती आचार्य लोग कहते हैं जो लोग कसाई है, पशु हत्या कर रहे हैं, बड़े निष्ठुर हृदय वाले, उनके ये हो, बोले हम लोग जो भक्ति नहीं करते हम भी सब पशुघाती है, हम भी सब पशु तो है, अपना जो सोल जो आत्मा है उनका कल्याण नहीं, उनका कल्याण के एकमात्र उपाय है ये भक्ति, इसके द्वारा आत्म कल्याण हो सकता। अगर हम भक्ति में आचरण नहीं करते हैं तो हमारे आत्मा को भी हम हनन करते हैं, उसको हत्या करते हैं, हम भी पशुघाती है जो अभक्त है। तो इसलिए दो प्रकार के लोग इस कथा में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, नहीं तो ये तो ऐसे पोटेंट कथा है। वो बोलते हैं कि इस भवसागर, इस भौतिक संसार के नाना प्रकार के दुख, ये त्रिताप, त्रितापनाशन, तापत्रयो उन्मूलनम, इसी सेकंड वर्ष में क्या आ गया, तीन प्रकार ताप को उन्मूलन कर जड़ से उखाड़ के फेंकने वाला है। बाकी कोई मेडिकल साइंस में जाओ, पेन किलर देंगे, आप जानते हैं पेन किलर का क्या साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट की फ्रंट इफेक्ट क्या होता है जो भी हो, लेकिन ये ऐसा है, उसका इफेक्ट तो ऐसे है, उसको सेवन करने मात्र से ही तापत्रयो उन्मूलनम, तापत्रय उन्मूलन हो जाएगा। और इस भौतिक संसार के जो बंधन है, नाना प्रकार के जो कष्ट है, उस कष्ट को मिटाने का महामहौषधि है भवरोग औषधि, भवौषधि, परीक्षित महाराज के लिए तो भवरोग के मिटाने के लिए औषधि है, औषधि। मेडिसिन का नाम सुनकर के थोड़ा हमको खराब लगा, मेडिसिन बहुत खा के थक गया, ओ बड़े कड़वा कसाय, पता नहीं क्या टैबलेट, नहीं नहीं टैबलेट, ओ चूर्ण है वो भी, वह सब मेडिसिन अच्छा नहीं, बोले ये मेडिसिन ऐसा है उसको मुंह से लेना नहीं पड़ेगा, कड़वा कसा के बात ही क्या, इंजेक्शन है क्या, ना 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 इंजेक्शन तो और खतरनाक है वो इंजेक्शन भी नहीं, मसाज कोई एक्सटर्नल यूज, मलम भी नहीं, कोई चूर्ण नहीं, टैबलेट नहीं, सिरप नहीं, कुछ नहीं, वो क्या नो ऐसे दवाई है, आओ चुपचाप बैठो, वो कोई दुकान से खरीद में नहीं पड़ेगा, केवल आपको ठिपी खुला हुआ जो कान है उसको खोलकर सुनो, वही सुनना ही उसका सेवन है, उस दवाई के लेना ये दवाई। अब कोई टेस्ट का कोई फर्क नहीं, कड़वा कसा तो जीवा में लगेगा नहीं, तो फिर क्या करना ऐसे, और वो कान में जाएगा और हृदय के लिए और मन के लिए टनिक, अमृत जैसा है रसायन ऐसे। तो इस प्रकार इस कृष्ण कथा को सुनना, और इसी से ही भक्ति के शुरुआत होता है, इसके भक्ति के पोषण होता है, और वही भक्ति के सबसे उच्चतम स्थिति, किसी भी व्यक्ति को सर्वोच्च स्थिति प्राप्त कराने का कोई अगर सर्वोत्कृष्ट माध्यम है तो ये भगवत कथा सुनने का इच्छा, ये भगवत कथा सुनने का इच्छा पैदा कैसे होगा, पैदा होगा जो सुनते हैं उनके संग करने से। जिसे कोई शराब आदि नहीं पीता, कोई उनके फ्रेंड मिल गए नशेड़ी शराबी, तो धीरे धीरे थोड़ा टेस्ट का अच्छा नहीं लगता, कड़वा लगता है, लेकिन अरे थोड़े ले लो, लो दो चार दिन थोड़ा कड़वा, वो फिर मीठा अच्छा लगेगा उसको, लेकिन ये तो शुरू से अच्छा लगने वाला है, अमृत जैसा है। तो इसी प्रकार यही भागवत में जो भक्तों के वर्णन है, इसी भक्तों के कथा सुन करके उनके संगति से ये रुचि प्रकट किया जाता है, वासुदेव कथा रुचि, शुश्रुषु सद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि, स्यात् महत्सेवया विप्रा पुण्यतीर्थ निसेवनात्। विप्र पुण्यतीर्थ आदि का सेवन, वो सारे भक्तों की सेवा से ही इस भगवत कथा में रुचि उत्पन्न होता है, भगवत कथा में रुचि। और ये भगवत कथा रुचि ही सम्यक व्यवस्थिता बुद्धि, ही बुद्धि की सम्यक व्यवस्थित स्थिति यही भगवत कथा रुचि ही है। तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में सबसे पहले से लास्ट तक यही लिखे हैं, प्रभुपाद जी शुरुआत करते हैं कि देखिए राजर्षि जो प्रमुख शासन कर्ता होते हैं, शासक होते हैं, उनको कृष्ण कथा सुनना अनिवार्य है, दे मस्ट हियर कृष्ण कथा, भागवत सुनना चाहिए उनको। और शोक प्रकट करते हैं प्रभुपाद जी ने, बोलते हैं आजकल हमारे शासक है, वर्तमान शासक तो फिर भी थोड़ा बेटर है, लेकिन जो शासक रहे अभी तक तो सारे कैसे ही रहे सब, बोले कैसी प्रकार लोगों के हाथ में, दुर्भाग्यवश इस युग में सरकारी शक्ति धीरे धीरे इसे निकृष्ट लोगों के हाथ में जा रही है जिन्हें कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। जब प्रशासनकर्ता को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है तो साधारण जनता को कैसे पता चले, कैसे पता चले। तो इसलिए उनका ये उत्तरदायित्व होता है, दिस इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए भगवान भी कभी कभी आते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः, भगवान ने आकर के बड़े बड़े राज ऋषियों को ये गीता आदि भागवत आदि पढ़ाकर सिखाते थे, बोले आप लोग को जानना चाहिए तभी आपके बुद्धि में ठीक होगा, तो प्रजाओं के फिर ये ज्ञान प्राप्त होगा। जब गवर्नमेंट मदद नहीं, सरकार खुद नहीं जानेगा उसके महत्व को, दूसरे को क्या कराएगा, रोक लगा देगा, बोले नहीं गीता नहीं चल सकता, हरे कृष्ण कीर्तन नहीं कर सकते, रोक लगा देंगे। हमारे भारतवर्ष में तो ऐसे संविधान बना है, बोलते हैं कि क्या है सेकुलर धर्म निरपेक्ष धर्म के बड़ी निरपेक्ष है, मानते नहीं, अधर्म को सापेक्ष धर्म की अपेक्षा करेंगे, धर्म की अपेक्षा नहीं करते। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो बोलते हैं लेकिन जितने प्रशासन करता उनको अच्छी तरह से इसका ज्ञान होना चाहिए, और इसीलिए समाज की पतन हो रहा है इसी के कारण, क्योंकि जो हमारे शासनकर्ता राजा होते हैं उनको ये ज्ञान नहीं है, इसीलिए हमारी बुरी तरह स्थिति है। सरकार के प्रशासकों को कृष्ण कथा समझनी चाहिए, अन्यथा प्रजा कैसे सुखी हो सकता है, बोले प्रजा का सुख कैसे आशा किया जा सकता है जब शासक भक्त ना हो, उनके कृष्ण कथा में रति ना हो, कैसे हो सकता। जिसका मन कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो चुका है, समझिए कि जीवन के मूल्य के विषय में उसके बुद्धि प्रखरता को प्राप्त कर चुका है। महाराज परीक्षित राजर्षि सप्तम थे और सुखदेव गोस्वामी मुनि सप्तम थे। रूपा जी कहते हैं दोनों टॉपमोस्ट कैंडिडेट, बोलने वाला और सुनने वाला, इन दोनों का जो परफेक्ट मैच है, और इसे वक्ता और श्रोता की जो गुण बताया गया भागवत में, कृष्ण कथा इतनी उत्साहदायक है कि महाराज परीक्षित समस्त भौतिक बातों को, यहां तक कि खाने पीने संबंधी निजी सुविधाओं को भी भूल गए थे। मैं बोला ना आमरण अमसन किए थे, प्रायोपवेशन गंगा किनारे गए, बोले पानी तक नहीं पूंगा, और सोने का बात ही क्या है, कुछ भी नहीं खाएंगे, नो ब्रेकफास्ट, नो लंच, नो डिनर, नो जूस फ्रूट्स, नथिंग। आप बोलेंगे भैया ठीक है प्रसन्न भाई, फलाहार जलाहार कुछ तो नहीं, सफला सजला भी नहीं है, कंप्लीट फास्टिंग करके ये सब त्याग, बोले किसी के लिए त्याग, इतने बड़े त्याग, हम साल में एक बार आता है निर्जला, बोलते ये पता नहीं इतनी जल्दी कैसे आ गया यार। और फिर चलो करते हैं, करता ना करना पड़ेगा, कोई कोई लोग करते हैं निर्जला, जो कर डालते हैं, हम या इसमें से एक है जो करते हैं, और जिस दिन एकादशी उस दिन दोपहर से पहले से ही मन में हुई कल कैसे व्रत उद्यापन करेंगे, मिश्री पानी, मिश्री भिगा, मिश्री ला के भिगाओ, गुड़ होने से थोड़ा ब्लैक पेपर भी डालने से अच्छा रहेगा, केवल पानी से, उसके बाद में क्या करेंगे, पूरे एकादशी के दिन यही चिंतन चल रहा कैसे बदला लेंगे दूसरे दिन। और दूसरे दिन मंगला आरती के बाद जो पारायण समय होता है, अरे सारे टूट पड़ते हैं, आप देख एकादशी का प्रतिशोध भली प्रकार से लिया जाता है ना नहीं। लेकिन यहां ऐसा कुछ था नहीं, परीक्षित महाराज कोई एकादशी तिथि नहीं था, कुछ नहीं था, इतने बड़े व्रत धारण करके प्रायोपवेशन गंगा किनारे बैठ गए, जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि के समाज आकर चारों तरफ बैठ गए, बोले महाराज आप कैसे, बोले गाय तब विष्णु गा था, बोले बस आप आ गए, अब कृष्ण कथा कहिए। उनका मन में कृष्ण कथा सुनने के प्रति इतने प्रबल लालसा था, वो तो इतने गदगद हो गए जब सुने कि मुझे अभिशाप मिल गया। बोले वाह वाह वाह, भगवान कृपा करके भगवान एक टाइम भी दिए मुझे, एक हफ्ता टाइम दिए, बस कुछ नहीं, दिन रात केवल सुनूंगा मैंने कृष्ण कथा। अब सारे छोड़ छाड़ करके भगवत पादादक, भगवत चरणादक, भगवती गंगा माँ के शरण में रह करके भगवत कथा को सुनने लगे। उनका इच्छा था, इसलिए भगवान ने कृपा करके सबसे बड़े बोलने में अथॉरिटी श्री सुखदेव गोस्वामी को भेजे। सुख परीक्षित संवाद, वही तो हम लोग का क्लास डेली कर रहे हैं, वो उनके विशेष हुआ। तो इसी को प्रभुपाद जी ने अंत में कहते हैं कि कृष्ण कथा इतनी उत्साहदायक है कि महाराज परीक्षित समस्त भौतिक बातों को, यहां तक कि खाने पीने संबंधी सुविधाओं को भी भूल गए, इतने कृष्ण कथा लाभदायक है। खाने पीने भी भूल गए, वो सचमुच भुला जाता है। हम लोग अगर कुछ समय खाएंगे पिएंगे नहीं, बिल्कुल पड़ जाएंगे, सो जाएंगे, पता नहीं कि वो हॉस्पिटलाइज हो जाए, क्या हो जाए, किस स्थिति हो जाए। लेकिन वास्तविक जिनका कथा के प्रति रति है, निष्ठा है, उनको तो इच्छा ही नहीं होगा, भूख होगा ही नहीं, उनको प्यास आएगा ही नहीं। सुखदेव गोस्वामी आश्चर्य हो गए, बोले कि राजा तू आकर थोड़ा पीपल जूस वूस पी लो, कम से कम बैठो, मैं बोलता हूं, कोई बात नहीं। ये बात आगे आप सुन चुके होंगे, इस बात को बोलते हैं कि नहीं 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 गुरुजी, ऐसा नहीं, यही प्राणघाती प्यास के कारण तो मेरे दशा है, अभी मुझे कभी नहीं आएगा। आप जो बोल रहे हैं कथा, अब तो बोलते रहे, दशम स्कंद के शुरुआत में ये बात कहे उन्होंने। यह इसका प्रमाण है कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन को वक्ता तथा श्रोता दोनों को एक समान दिव्य स्तर पर लाने तथा भगवत धाम ले जाने के लिए सारे विश्व में किस तरह फैल जाना चाहिए। इसमें ट्रांसलेशन थोड़ा गड़बड़ दिया मुझे लगता है। तो प्रभुपाद जी ने ये इच्छा प्रकट कर रहे हैं कि जिस प्रकार यहां अति उत्कृष्ट धरण के श्रोता और वक्ता का समन्वय हुआ था, गंगा तट पर स्थान भी ऐसा था, वक्ता भी ऐसे थे, श्रोता भी ऐसा थे, समय भी ऐसा था, बिल्कुल परफेक्ट। बोलते इसी प्रकार में ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन बनाया, इसी में मुख्य विषय यही होना चाहिए। एक जापुर प्रभात बोलते हैं कि अगर संभव हो तो 24 घंटा हमारे इंस्टीट्यूशन में केवल यही भागवत कथा होना चाहिए, सुनना चाहिए, बस 24 आवर्स यू शुड डू दिस, और कुछ नहीं करना चाहिए। तो इसी बात को भी यहां इच्छा प्रकट करके कह रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन में ये मुख्य विषय होना चाहिए, प्रामाणिक श्रोता हो, प्रामाणिक वक्ता हो, और सारे दुनिया में इसके प्रचार हो, इस कथा के प्रचार, ऐसे प्रामाणिक बोलने वाला भी हो, प्रामाणिक सुनने वाला हो। क्लास का ये भागवतम क्लास जो है, ये इस्कन का एक जड़ है, तो इसी को कहते हैं सारे दुनिया में यही फैले, यही उनका इच्छा है। इस प्रकार अथेंटिक डिस्कोर्स ऑन भागवतम, और सुनने वाले भी इच्छा रख करके उसको सुने। हम लोग का तो संस्था में सुनना पड़ता है, नहीं तो क्योंकि प्रसाद में लेट 9 बजे प्रसाद मिलेगा और तो क्या लेकिन उनका परीक्षित महाराज का ऐसा कुछ 9 बजे प्रसाद मिलेगा ऐसा कुछ आशा तो था नहीं, प्रसाद मिलने का इच्छा ही नहीं, लेने का इच्छा नहीं था, कोई टाइम भी नहीं था, लेकिन फिर भी कैसे सुनना चाह रहे थे। तो इस प्रकार के भगवान कृष्ण के कथा के प्रति केवल लालसा उत्पन्न हो जाना ही जीवन का संसिद्धि है, यही जीवन का संसिद्धि है, सम्यक सिद्धि है। तो इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार के आलोचना बहुत आवश्यकता है। इसके द्वारा हम जान सके, हम जो कुछ दुनिया में जिस प्रकार के साधन भंज जो भी उच्च कार्य सब कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन इसके सारे के फलस्वरूप अगर भागवत के प्रति, कृष्ण कथा के प्रति उत्साह लालसा आग्रह प्रकट नहीं हुआ तब कुछ गड़बड़ है, तब डिफेक्ट है कहीं, कोई तो डिफेक्ट है, सुधारो उसको। लेकिन बाकी कुछ में नहीं, सब में ढीला है, लेकिन क्लास में बड़े सीरियस है, बोले वो तो पक्का है, वो पक्का है, उसके लिए कोई डाउट नहीं। तो इस प्रकार से हम प्रैक्टिकली हम लोग का भक्तिमय जीवन का भी हम परीक्षण कर सकते हैं। और जो भी हम लोग जितने साधन भजन प्रयास आदि जो भी करते हैं, ये लक्ष्य रखकर करना चाहिए कि इसी प्रकार हमारा भी बुद्धि सम्यक व्यवस्थिता हो जाए, कृष्ण कथा के प्रति प्रगाढ़ लालसा उत्पन्न हो जाए। हरे कृष्ण। हाँ जी, यस बोलिए, अभी बोले, हाँ बोलिए।
हरे कृष्ण महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने श्रवण का महात्म्य बताया इतना अच्छे से। तो जैसे अभी हमारा परिस्थिति है, जैसे मेरा परिस्थिति है, वासुदेव कथा रुचि नहीं है, तो शास्त्र कहते हैं, आचार्य कहते हैं कि सुनते रहो सुनते रहो, सुनते सुनते रुचि आएगा, लेकिन ये जो इनिशियल सुनने का भी तो कुछ बन नहीं रहा है, या तो मन भाग जाता है या तो नींद आ जाता है, वो स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, तो आगे तो रुचि फिर कैसे बढ़ेगा, उसको कैसे करें?
भागवत में मैं उत्तर दिया ना, सुने बोल, सुसुसु सदधानस्य वासुदेव कथा रुचि। भगवान वासुदेव की कथा में रुचि सुनने में कैसे प्रकट होगा, वो बताते हैं कि स्यात् महत सेवया पुण्य तीर्थ निसेवनात्। पुण्य तीर्थ की सेवा और महत की सेवा, ये दोनों करने से वासुदेव कथा सुनने के प्रति रुचि उत्पन्न होता है, तो उसको कीजिए। और आचार्य लोग कहते हैं ये पुण्य तीर्थ क्या है, ये महत क्या है, बोले दोनों ही भगवान के भक्त है। कोई भगवान के उच्च कोटि के प्रामाणिक भक्त की सेवा करो, अगर वो प्रसन्न हो जाए, ऑटोमेटिक कथा में रुचि आ जाएगा, ये फॉर्मूला है ना। ट्राई टू डू दैट। यस,
महाराज इसका एक श्लोक पहले का श्लोक में परपट में प्रभुपाद जी महाराज बताए हैं कि जब तक सुखदेव गोस्वामी जैसा महान आचार्य से श्रवण नहीं करेंगे, तब तक हमारा कभी कल्याण नहीं हो सकता। तो अभी जो हम देख रहे हैं इस्कन मूवमेंट में, अभी भक्त लोग प्राय हम ईयरफोन में सुनते रहते हैं हमारा लोगों का लेक्चर, जैसा डायरेक्ट सुनना और ईयरफोन में सुनने बहुत अंतर होता है,
बहुत अंतर है।
तो अभी वो सुझाव हमको नहीं मिल रहा है, तो अभी क्या करेंगे हम इस सिचुएशन में? अभी
नहीं, अब कम से कम प्रभुपाद जी ने सिस्टम दिए हैं, एवरी डे मॉर्निंग क्लास है, इवनिंग क्लास भी रखे हैं, कम से कम एक क्लास तो मॉर्निंग में तो कंपलसरी है ही, ये मंदिर में होता है, सब जगह में, सब मंदिर में होता है, उसको सामने आकर बैठ के सुनिए। आप जहां तक कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी तो हम देखे नहीं, वो तो मिलेंगे नहीं, हम इसके लिए ढूंढना भी प्रयास बेकार है, लेकिन ऐसे सुखदेव गोस्वामी के कही हुई बात को ठीक प्रकार से आपने मुड़ बुद्धि न लगाकर जो करता है, तो उनके प्रतिनिधि उनको ही माना जाएगा, उनके भी यही बेनिफिट वही मिलेगा, है ना।
हरे कृष्ण महाराज,
इसलिए सामने सुनना चाहिए। बोलिए।
हरे कृष्ण, जैसे आप बोले कि जो भक्तों की सेवा करने से रुचि बढ़ेगा, लेकिन भक्तों की सेवा करने के लिए मन ही मन में विचार नहीं आता, तो भक्तों के प्रति हमारा ये विचार आता है, वही तो प्रॉब्लम है, सेवा भावना आता नहीं उनके प्रति, ये
भक्तों पर द्वेष आ जाता है, क्रिटिसाइज करने के लिए मन
होता है, कैसे करेंगे, वही तो
उनका आलोचना करने के लिए बढ़िया मजा लगता है, मन होता है, लेकिन सेवा करने के लिए मन नहीं करता, वो तो भारी सीरियस डिजीज है, उसको और मामूली मेडिसिन से काम, ऑपरेशन करना पड़ेगा, साधारण दवा से काम नहीं होगा, सीवियर डिजीज है ना। नहीं,
भक्त मतलब जैसे कोई कोई बोला ऐसे भी महान महान भक्त लोग है, जैसे कोई आज कनिष्ठ है, भविष्य में वो धीरे 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 शुद्ध भक्त बन सकता है, बनेगा, बन सकता है, तो हम लोग कभी कभी खाली बड़े बड़े भक्तों को जो ये, लेकिन ऐसे भगवान कैसे आएगा?
ये बड़े छोटे के पहचान यही श्लोक में तो वही कहता है, जिनका कथा के प्रति रुचि ज्यादा है उसी को माना भक्त, बस उसी की सेवा करो। हाँ, अभी कितने साल के पुराने, कितने साल के मोटा पहनता कपड़ा, उसको मत देखो, कीमती ड्रेस है, कीमती, ये सब चीज को मत देखो, क्या देखना है, हाउ टू नो इज पक्के भक्त है कि नहीं, कथा रुचि, श्रवण लालसा है कि नहीं, इसी के यही एक ही माध्यम है, इसके द्वारा जान करके उनकी सेवा करो, तब आपको कुछ फायदा होगा, बाकी कोई माध्यम से करने से नहीं होगा, है ना।
हरे कृष्णा महाराज।
हाँ जी, वेरी ओके।
महाराज, कभी कभी ऐसे कथा में रुचि, भागवतम पढ़ने में रुचि आता है तो ऐसा लगता है कि अभी पढ़ना है, एक घंटा दो घंटा बैठ के, लेकिन थोड़े से पढ़ने के बाद फिर मन भागता है और फिर
पढ़ने से सुनना प्रभावशाली है ना। अब सुनिए, हमारा नवदा भक्ति में पढ़ना नहीं है, सुनना है ना प्रथम।
उसमें रुचि कैसे आएगा कंटिन्यूअसली?
यही तो मैं बता रहा हूँ, रुचि कैसे आएगा, जो सुनने वाले भक्तों की सेवा करो ना, उनके सेवा से ही रुचि प्रकट होता है ना। और कुछ? यस,
हरे कृष्ण महाराज जी, एक प्रश्न है कि आपने बताया क्लास में जो पक्का है वो ठीक है, तो मेरा प्रश्न है कि जैसे रूपा जी लास्ट में कह रहे हैं कि ये जो भागवतम क्लास है ये पूरे विश्व में फैलना चाहिए, तो मैं सुन लिया और वो करने के लिए मैं प्रयास नहीं कर रहा हूँ, तो ये पक्का है क्या, बस कान से सुन लिया और दूसरे दिन फिर सुन लिया कुछ कर नहीं रहा हूँ?
क्या आपका क्वेश्चन क्या है?
जैसे प्रभुपाद जी श्लोक में बता रहे हैं कि ये भागवतम
सारे विश्व में फैलना चाहिए।
जो भी मैसेज दे रहे हैं प्रभुपाद जी वो मैं प्रयास नहीं कर रहा हूँ करने के लिए, आज भागवतम सुन रहा हूँ फिर कल देकर सुनूंगा, तो ये पक्का है क्या है ये?
हाँ, तो आपका कहना हम सुनकर बैठेंगे बोलेंगे नहीं तो कैसे चलेगा, जो आप ठीक से सुनेंगे तो सुनने में बोला जाता है बोलने के लिए, तो फिर बोलेंगे यही बात तो सुनेंगे कि प्लीज स्पीक। जैसे यही आज क्या सुने आपने कि होना चाहिए, तो मन में प्रेरणा आया ना कि नहीं, स्टार्ट एवरीवेयर, यही तो सुन रहे हैं, वो क्या सुन रहे हैं, सुन करके घर बैठने के लिए थोड़ी सुन रहे हैं। आप सुनना, आपको यही सुनाया जा रहा है, प्लीज जा करके दूसरे में प्रचार करो, यही तो सुनाया जा रहा है, तो ही नहीं करेंगे तो क्या सुना फिर आपने? सुनने का विषय वस्तु तो यही है कि बोलो करके आप बैठ कैसे जाएंगे।
जैसे आप बोले कि ये सुनना चाहिए, वो तो भागवतम क्लास सुनते हैं, और पढ़ना अगर प्रभुपाद के बुक्स नहीं पढ़ेंगे तो कैसे? अभी जैसे दूसरे भक्त लोग लेक्चर देते हैं हम सुनते हैं, लेकिन डायरेक्ट प्रभुपाद के बुक्स पढ़ना
जो सुनने में नहीं हो पाता है उनको हमेशा, तो फिर पढ़ें, तो वो सबसे सेकेंडरी हियरिंग है पढ़ना, है ना, नहीं प्राइमरी है सुनना, क्योंकि सभी लोग का नहीं सुन पाते हैं, तो कितने लोग बैठते हैं, तो हजार हजार लोग, तो इसके लिए प्रभुपाद जी ने ग्रंथ लिखे, तो वो लोग भी कम से कम उसको तो प्राप्त करें, नहीं मिलता इसके लिए, लेकिन जिसको उसकी सुविधा प्राप्त है उसको अवश्य लगना चाहिए। यस,
हरे कृष्ण महाराज जी, जैसे भागवतम कथा में कभी कभी जैसे स्टोरी आता है तो लीला आता है तो उसमें तो सुनने में रुचि लगता है, लेकिन थोड़ा प्रेयर्स आ गया या फिलोसफी आ गया तो फिर दिमाग मतलब छोड़ देते हैं ऐसा, तो उसमें वो अच्छा है क्या कि खाली लीला सुने या?
बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, तो जो चीज में रुचि आता है कम से कम उसी को तो सुनिए, वही भागवत है, लेकिन उसको सुनने के बाद में फिर आपका मन में रुचि आएगा कि क्या है चीज, उसको जानने के लिए, है ना, नहीं जो बड़े बड़े महानुभव महान भक्त लोग ने भगवान को क्या क्या कहे, स्तुति किए हैं, उसको मेरा जानने के लिए रुचि आएगा, तभी बोलिए लीला तो सुनिए, हृदय शुद्धि हो तब फिर इच्छा होगा, है ना, तब तो जानने के। अब इन द बिगिनिंग स्टेज, इसीलिए तो नए भक्तों पूरी हलवा फर्स्ट क्लास खिलाया जाता है, बोले वो जानते नहीं, दबा कर खाएं तो रहें, कुछ नाचेगा कुछ करे, और बाद में जैसे सीनियर हो जाए धीरे धीरे बोलेंगे नहीं अब तो बस सूप में चल जाएगा, एक बिना घी रोटी में बल सब्जी में चल जाएगा, तो बस आ जाए, बिगिनिंग में खूब डांट कर खाओ और लीला को सुनो, रुचि हो जाए तो फिर धीरे धीरे शुद्ध होने के बाद फिर उसको भी सुनने के लिए आएगा, नहीं तो अभी सुनेंगे ये सब फिलोसफी नींद आता है ना। और कुछ?
हरे कृष्ण महाराज, महाराज आपने एक पॉइंट बोला था कि अगर अभिशाप उनको परीक्षित महाराज को अभिशाप नहीं मिलता तो ये सुंदर भागवत कथा नहीं आता, लेकिन ये भागवत कथा रचना व्यासदेव ने किया है तो वो तो त्रिकाला ज्ञ थे, अगर वो इंसिडेंट अगर उनको अभिशाप नहीं मिलता तब तो ये रचना भी हो सकता था भागवत
रचना करके अपने पास रखे थे गोडाउन में, क्या काम था उसमें, है ना, ये हुआ तो तब जाकर आया, नहीं तो रचना तो बहुत पहले से था, क्या फायदा था, है ना। नहीं
हरे कृष्ण महाराज, महाराज जैसे हम सुने आज की महत सेवा करने से श्रवणम में रुचि होती है और ऐसे भक्तों का संग करने से जो श्रवण में रुचि रखते हैं तो हमारी भी रुचि बढ़ती है, तो ये तो हो गया संग करने से होता है, लेकिन भक्तों का संग हर जगह पर अवेलेबल नहीं रहता है, तो ऐसी जगह जैसे कि कुछ गांव है जहाँ पे कुछ ही एक दो ही भक्त है और भक्ति कर रहे हैं, अब वो तो महत सेवा वहां पर नहीं कर सकते रेगुलर बेसिस पे या फिर वीकली, और वो वहीं रहते हैं, तो अब ये इन्हें अगर श्रवण में रुचि बढ़ानी है तो ये लोग कैसे बढ़ाएंगे, ये भी भक्ति कर रहे हैं और लेकिन श्रवण में रुचि बढ़ाना है तो फिर अब ये महत सेवा तो नहीं कर पाएंगे, तो क्या
तो आपका कहना है कि गांव लोग जो भक्त नहीं है उनका रुचि कैसे आएगा, तो आप भक्त हैं आप जाना चाहिए गांव में तो आपके सेवा करेंगे तो उनका भी रुचि बढ़ेगा, है ना। नहीं आप अपने सेवा का अवसर दीजिए उनको, उनको कथा कहिए, उनको सेवा का अवसर दीजिए तो उनको ओके।
लेकिन मैं तो महत भक्त नहीं हूं ना,
हाँ तो फिर आप बनिए ना पहले। यही तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, भारत हुमिते मनुष्य जन्म हैलजार, जन्म सार्थक करी कर फर्स्ट डू योर ड्यूटी देन हेल्प अदर्स, है ना। आप अभी पीले से लाल बन जाइए फिर जाइए, है ना। नहीं प्रभु जी आपको भेजेंगे फिर, अब सुन लिए।
हरे कृष्ण, जैसे शुश्रूषया है तो जैसे उपदेश अमृत में कहा गया है कि निंदादि शून्य हृदया संवलता, तो सबकी सेवा करना वो शुश्रूषया है या
नहीं। नहीं नहीं, मैं तो बोला कि बोले चुन करके सेवा करो, उन भक्तों की सेवा करो जिनका अंदर रति है, वही निंदादि शून्य हृदय है, उनका बस दूसरा निंदा करने काम नहीं। हरा प्रभु तो यही बात कर रहे थे, भक्तों की सेवा करने की इच्छा नहीं, भक्तों की आलोचना करने के लिए इच्छा होता है, निंदा करने के लिए तो हम बिल्कुल बढ़ जाते हैं और थेसिस लिख लेते हैं उसके ऊपर, लेकिन सेवा करने की इच्छा नहीं, बोले ये सीरियस डिजीज है, है ना। नहीं आप कुछ पूछो, बोलिए।
हरे कृष्ण महाराज जी, आप स्वधर्म के बारे में बताए थे, तो स्वधर्म जो है भक्तों पर कैसे लागू होता है, भक्त को कैसे पता चलेगा कि स्वधर्म हमारा क्या है।
बाबा अपना धर्म आप क्या है, ब्रह्मचारी है कि गृहस्थ है कि सन्यासी है कि वानप्रस्थ है, और कौन सा वर्णम है, कौन सा आश्रम है, उस वर्ण और आश्रम के अनुचित जो प्रेस्क्राइब ड्यूटी है जो वैधानिक क्रिया है वही स्वधर्म है और क्या है, आया समझ में।
सेवा
जो जो व्यक्ति जिस स्थान में जिस आश्रम में जिस वर्ण में है उन वर्ण और आश्रम के अनुचित जो निर्धारित कर्तव्य है उनको स्वधर्म कहा जाता है, ऐसा समझो।
यस,
हाँ तो उसी को अगर ठीक से पालन करे लेकिन भक्ति ना करे इट्स यूजलेस। अगर कुछ भी धर्म फर्म कुछ नहीं पालन किए, सब छोड़ छाड़ के कृष्ण भजन किए, दैट इज बेस्ट। ओके, देशी समाज के काम करना चाहिए, माता पिता के सेवा करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना, नाना प्रकार के सब इच्छाएं सब आशाएं रहते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं किया, किसी का सेवा नहीं किया, कुछ नहीं किया, सब छोड़ छाड़ के आकर कृष्ण की सेवा किया, बोलते हैं कि सारे ऋण मुक्त हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा उसको, लेकिन इसको कृष्ण सेवा को छोड़ करके बाकी सारे सेवा कितने बढ़िया किया वो काम नहीं बनेगा, है ना। नहीं वही कहना। यस,
मेरे ख्याल से प्रश्न जो आ रहा था, कई बार ऐसा देखा जाता है मंदिर में महाराज कि हम बोलते हैं ना सब सेवा छोड़ के भजन करो, तो फिर वो डीटी सेवा छोड़ के मंदिर सफाई,
तो डीटी सेवा के भजन नहीं है क्या,
वो लोग वो सोचते हैं कि भजन सिर्फ हरे कृष्ण जप करो और सो जाओ।
अरे ये भी भजन है ना, झाड़ू मारना भी भजन है, क्लास देना भी भजन है, कीर्तन आरती करना भी भजन है, कीर्तन करना भी भजन है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना भी भजन है, टॉयलेट बाथरूम साफ करना, एनी सर्विस आपके लिए नहीं, अगर कृष्ण और कृष्ण भक्तों के लिए कर रहे हैं वो भजन है ना। भजन के लो ये नहीं कि माला करो बैठ करके, ये नहीं, एवरी सर्विस इज भजन। यस यस
महाराज, द्वेष के कारण हम निंदा करते हैं, तो द्वेष दोष और निंदा की प्रवृत्ति से कैसे बचे?
द्वेष से क्या बचने का उपाय है? द्वेष हृदय की एक बीमारी है और हृदय रोग को शुद्ध करने के लिए भक्ति करना पड़ता है। नाम जप आदि हृदय शुद्धि का यही दवाई है, तो इसलिए भगवान की कथा श्रवण करना, भगवान के नाम आदि जप करना। अभी द्वेष है लेकिन करो उस द्वेष के साथ भी, उसको धीरे 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 द्वेष भी निकल जाएगा। ये एक डिजीज है, वो डिजीज ठीक करने का ही उपाय है द्वेष करने का। और उससे भी बेटर होगा कि हमारा अंदर में द्वेष भरा है लेकिन कोई ढूंढे कोई ये व्यक्ति जिसके अंदर द्वेष नहीं है, उनको सेवा करे तो और इफेक्टिव होगा और जल्दी चला जाएगा, है ना। ओके, ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की समवेत भक्त वृंद की।